नमस्कार भारत, तारीख 27 सितंबर, दिन गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अडल्ट्री कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, क्या हो सकता है इसका असर?
कुछ लोगों को लगता है कि पति पत्नी के खिलाफ केस नहीं ला सकते, इसका मतलब ये महिलाओं के अधिकार को कायम रखता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध, लेकिन विशेषज्ञों की क्या है चिंताएं?
हमने देखा है राजस्थान में लगभग 20% लोग आधार होने के बाद भी अपना हक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मशीन काम नहीं करती है, इंटरनेट काम नहीं करता है।
नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थरबाजी मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों का क्या है कहना?
बहुत काफी तो बहुत काफी पिटल अभी तक चल नहीं खेजा तो रुपया मिल गया, समझ गई नहीं।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन अमरीका के आगामी मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करना चाहता है। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में दुनिया के कई बड़े नेताओं के सामने कही। ट्रंप ने कहा कि चीन नहीं चाहता है कि वो चुनाव जीते, क्योंकि वो ऐसे पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं जिसने चीन को व्यापार के मुद्दे पर चुनौती दी है। हालांकि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप के दावों को अनुचित आरोप कहकर खारिज कर दिया। चीन हमेशा से दूसरे देशों के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी न करने के सिद्धांत का पालन करता आया है। यह चीनी विदेश नीति की परंपरा रही है। हम चीन पर लगाए गए अनुचित आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकते। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के शब्द। अमेरिका में 6 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित उम्मीदवार ब्रेट कैनवो के खिलाफ तीसरी महिला ने यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। जूली स्वेटिंग नाम की इस महिला का कहना है कि कैनवो 1980 के दशक में हाउस पार्टियों में लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका यौन शोषण करने वालों में शामिल थे। महिला का कहना है कि साल 1982 में वो ऐसी ही एक पार्टी में खुद भी गैंगरेप का शिकार हुई थी और उस पार्टी में ब्रेट कैनवो भी मौजूद थे। वहीं कैनवो ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इन सब के बीच कैनवो के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शमर ने कहा कि कैनवो का नामांकन वापस लिया जाना चाहिए।
I strongly believe Judge Kavanaugh should withdraw from consideration.
मैं पूरी तरह मानता हूं कि जज कैनवो को अपना नामांकन वापस लेना चाहिए, और अगर वो खुद ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रपति को उनका नामांकन वापस करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो कम से कम सुनवाई और वोटिंग तब तक के लिए रोक दी जानी चाहिए जब तक कि FBI की जांच पूरी नहीं हो जाती। ये सारे आरोप बेहद गंभीर और परेशान करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद शमर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दो ऑनलाइन खोजी समूहों का दावा है कि उन्होंने पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर नर्व एजेंट से हमला करने वालों की असली पहचान कर ली है। सर्गेई स्क्रिपल और यूलिया स्क्रिपल पर इस साल मार्च में ब्रिटेन के सलिसबरी में नोविचोक नाम के जहरीले नर्व एजेंट से हमला किया गया था। बिलिंगकैट और द इंसाइडर नाम के इन समूहों का दावा है कि हमलावर का असली नाम कर्नल एंटोली चेपिगा है और उसे रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है। द इंसाइडर के एक पत्रकार ने BBC से कहा कि रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटेन के राजनयिकों के साथ मिलकर उसे वीजा दिलवाया था। हालांकि ब्रिटेन ने इन आरोपों पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले ब्रिटेन ने इस हमले में रूस का हाथ होने की बात कही थी, जिसे रूस खारिज करता आया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गंभीर आर्थिक संकट से जूझते अर्जेंटीना को जल्दी कर्ज देने के लिए राजी हो गया है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल से महंगाई और मुद्रा पीसो की कीमत में लगातार गिरावट की वजह से भयानक मंदी के दौर में है। इस बीच वहां ट्रेड यूनियन के नेता राजधानी ब्यूनस आयर्स के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। आज देश के सुप्रीम कोर्ट से दो अहम फैसले आ सकते हैं। इनमें से एक है अडल्ट्री यानी व्यभिचार से जुड़ा मामला, जिसमें अदालत को यह फैसला करना है कि अडल्ट्री कानून के तहत पुरुष और महिला दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरा मामला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा है। इस मामले में यह तय किया जाना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। कितने अहम हैं ये फैसले, सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय आज दो अहम मामलों में फैसला दे सकता है। पहला है एडल्ट्री यानी व्यभिचार से जुड़ा मामला, जिसमें कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि आईपीसी की धारा 497 के तहत एडल्ट्री कानून के तहत पुरुष और महिला दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए या नहीं। इटली में रहने वाले एनआरआई जोसेफ शाइन ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अपील की थी कि आईपीसी की धारा 497 के तहत बने एडल्ट्री कानून में पुरुष और महिला दोनों को बराबर सजा मिले। इस याचिका के जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ऐसा करने के लिए एडल्ट्री कानून में बदलाव करने पर कानून हल्का हो जाएगा और समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी कहती हैं,
इस डिसीजन का रिजल्ट कई कई केसेस में इम्पैक्ट लाएगा। जैसे कि आप हमारा केस ले लीजिए मैरिटल रेप का, हम ये कह रहे हैं कि अगर सहमति से हो रहा है तो इसको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। अडल्ट्री के मामले में अगर लोगों की सहमति से हो रहा है तो फिर ये हमें लगता है कि ये जो क्रिमिनल चीज है वो इस बात में आनी ही नहीं चाहिए।
1860 में बना एडल्ट्री कानून 150 साल से भी अधिक पुराना है। इसके तहत अगर कोई पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो महिला के पति की शिकायत पर पुरुष को एडल्ट्री कानून के तहत गुनाहगार माना जाता है। हालांकि इस कानून में एक पेच यह है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी कुंवारी या विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो वो एडल्ट्री के तहत दोषी नहीं माना जाता। करुणा नंदी मानती हैं कि धारा 497 का प्रावधान महिलाओं को संपत्ति की तरह देखता है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
कुछ लोगों को लगता है कि पति पत्नी के खिलाफ केस नहीं ला सकते, इसका मतलब ये महिलाओं के अधिकार को कायम रखता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि महिला को तो उसकी तो आवाज ही बंद करती, उसकी कोई इच्छा हो ना इच्छा हो उसको तो फिर ना के समान ही कर देता है।
इसके साथ ही एक अन्य मामला जिस पर आज फैसला आ सकता है वो है राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि संविधान पीठ के 1994 के इस्माइल फारूकी फैसले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत है या नहीं। इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी कहते हैं,
कोई खास इम्पोर्टेंस इस मुकदमे में नहीं होगी क्योंकि जो ये सूट्स यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, जिनकी अपीलें वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, उनमें कोई इशू ये नहीं था कि मस्जिद एसेंशियल है नमाज इस्लाम में या नहीं। ये तो चूंकि एक पुराने जजमेंट में 1994 के जजमेंट में एक ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन को हमारे वकीलों ने धवन साहब ने खासतौर से कहा ये गलत है, इसलिए इसको रिकन्सिडर होना चाहिए। तो कोर्ट इसी पर खाली कल जजमेंट देने जा रही है, ये रिकन्सिडर किया जाए या ना किया जाए।
माना जा रहा है कि इस फैसले का असर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर भी पड़ सकता है, लेकिन जफरयाब जिलानी मानते हैं कि इस मामले का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं, रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता और इससे निजता के उल्लंघन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह संवैधानिक रूप से वैध है और इसके तहत डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी दिया जाना गोपनीयता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन मानवाधिकार और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई जानकार इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, यही जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया है और कुछ सीमाएं भी तय कर दी हैं। लेकिन अर्थशास्त्री, तकनीक और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की चिंताएं अब भी खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि उनका ये भी मानना है कि आम लोगों को इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। जाने माने सामाजिक अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस कहते हैं,
मुझे लगता है कि इससे तो कुछ राहत मिलने वाला है लोगों को और खास करके गरीबों को। जैसे खास करके जो सेक्शन 57 था जिसमें प्राइवेट कंपनीज को आधार मांगने का हक दिया गया था वो तो रद्द हो गया है, तो इस तरह के कुछ रिलीफ है। लेकिन मेरे समझ में जो मेन इश्यूज है इस पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। उदाहरण के लिए कहा जाता है अभी भी कि आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन डिफैक्टो अब अनिवार्य हो गया क्योंकि डीबीटी में लगाया जा सकता है और पैन कार्ड के लिए लगाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पॉपुलेशन का बड़ा मेजोरिटी उसी में आएगा जिसको या डीबीटी मिलता है या जिनके पास पैन कार्ड है, तो डिफैक्टो फॉर मोस्ट पीपल कंपल्सरी हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड से हाशिए पर रहने वाले लोगों को पहचान मिली है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता निखिल दे मानते हैं कि आधार की वजह से कई लोग अपने हकों से वंचित रह गए।
हमने देखा है राजस्थान में लगभग 20% लोग आधार होने के बाद भी अपना हक नहीं ले पाते हैं क्योंकि मशीन काम नहीं करती है, इंटरनेट काम नहीं करता है, बैंक अकाउंट से ठीक से लिंक नहीं होता है, लोगों की लिस्टें ठीक नहीं बनती है। तो उन लोगों के लिए तो जीना ही कठिन हो गया क्योंकि राशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है। नरेगा के 100 करोड़ की मजदूरी पिछले साल लोगों की गायब हो गई और रिजेक्ट पेमेंट की कैटेगरी में चले गया।
अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार से भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। हालांकि सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान से जुड़ी अंजलि भारद्वाज का मत इससे अलग है। वो कहती हैं,
हमारा ये मानना है कि एक भी जो क्लेम सरकार ने करे हैं भ्रष्टाचार से लड़ाई के आधार को लेके, उसको वो बैक नहीं कर पाए हैं। वो चाहे राशन को लेकर हो, नरेगा को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, इन सभी में सरकार ने जब भी कहा है कि हमने भ्रष्टाचार रोका है इस कानून से, वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाए हैं अपने कथनी को।
आधार नंबर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमाएं तय कर दी हैं, जिसके अनुसार निजी कंपनियां अपने ग्राहकों से आधार नंबर नहीं मांग सकती। सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन इसका स्वागत करती हैं।
आधार के खिलाफ जिस तरह का सर्विलेंस की ताकत राज्य को मिलती है और डेटा का गैर इस्तेमाल होगा, इसके इस पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, वो एक अच्छी बात है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद कोई भी संस्था आधार डेटा को 6 महीने से ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रख सकेगी। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता रितिका खेड़ा इस 6 महीने की सीमा को भी अधिक बताती हैं।
मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से और जल्दी उसको खत्म कर देना जरूरी है और वैसे उनको ये बताना चाहिए कि वो मेटा डेटा उनको चाहिए ही क्यों।
रितिका खेड़ा का कहना है कि वो इस फैसले से हताश नहीं है। उन्हीं के शब्दों में, अब भी बहुत से रास्ते खुले हैं और इन पर आगे किस तरह अमल किया जाता है हमें उस पर नजर रखनी होगी। गुरप्रीत सैनी, BBC दिल्ली।
वहीं एक और अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता के हितों से सरोकार रखने वाले संवैधानिक मुद्दों पर चल रही कोर्ट की बहसों का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि इससे न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। कोर्ट का ये भी कहना है कि फिलहाल एक परीक्षण के तौर पर इसे लागू किया जाना चाहिए। यदि ये सफल रहा तो निचले कोर्ट में भी ऐसा करने पर विचार किया जा सकता है। ये कितना महत्वपूर्ण है, हमारी सहयोगी मानसी दास ने यही सवाल इस मामले में याचिकाकर्ता और जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह से पूछा।
मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है ये कि जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इस स्टेट में जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, और जहां तक पार्लियामेंट का सवाल आता है उनकी जो प्रोसीडिंग्स डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम होती है, तो इसी तरह से इतना ही महत्व सुप्रीम कोर्ट का है जितना राज्यसभा और लोकसभा का है। इसके अलावा मैं मानती हूँ और कोर्ट ने ये मंजूर किया है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि कोर्ट में क्या बातें हो रही है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है। इससे ना लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट में बढ़ेगा।
अब इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पर, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है, और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है जब वो जानेंगे तो जाहिर है कि जुडिशियरी को बेहतर तरीके से समझने के मौके भी हमें ज्यादा मिलेंगे।
जी बिल्कुल, मौके मिलेंगे, और जितने भी इस देश में लॉ स्टूडेंट्स है वो भी देख पाएंगे और उनके भी लॉयरिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे। और लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ तक वकीलों की आदत है बहुत ज्यादा बहस करने की और दोबारा वही बात कहने की, वो उनको खत्म करना पड़ेगा।
अधिक जानकारी दे रही थी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह।
बहुत काफी पीटल बात।
पचहत्तर वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बिहार में बक्सर के नंदन टोला के लोग बीते 8 महीने से सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। उन पर इसी साल 12 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा यात्रा के दौरान नंदन गांव में उनके काफिले पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। इस मामले में 91 नामजद आरोपियों का मामला दर्ज कराया गया था और 8 महीने बाद भी अभी तक 63 नामजद अभियुक्त जेल में हैं। बक्सर से नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
अब वो बचावे खातिर वो सब का कोशिश करे तनिया
बचावे खातिर कोशिश सब का कर लिया तो बोले वो करावे पड़ी।
हम लोगों में उतना काबू नहीं है जो मुख्यमंत्री से केस लड़ें। हम सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं और सरकार कहती है कि वो गरीबी से लड़ रही है। हम गरीब हैं, आप ही बताइए कि हम क्या करें, गरीबी से लड़ें कि सरकार से। ये कहना ब्रिज बिहारी पासवान का है। ब्रिज बिहारी बक्सर जिले में नंदन गांव के 91 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ डुमराव थाने में इसी साल 12 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले पर पत्थरबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज है। नंदन गांव के महादलित टोला के ये लोग पिछले 8 महीने से सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही डुमराव पुलिस अब चार्जशीट करने की तैयारी में है क्योंकि DSP की सुपरविजन रिपोर्ट में 91 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सत्य पाए गए हैं। पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले के एक नामजद अभियुक्त यमुना राम कहते हैं,
बहुत काफी पीटल बार वो अभी तक ले कोरो चल नहीं
के मुझे और मेरी पत्नी को पुलिस ने अधमरा करके छोड़ दिया। 2 महीने तक पुलिस ने पूछताछ के नाम पर टोला की महिलाओं को परेशान किया क्योंकि पुरुष सारे डर के मारे गांव छोड़कर जा चुके थे। पुलिस की जांच को आखिर हम कैसे सही माने जब मामले में ऐसे लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है जो पहले से मृत थे। कुछ ऐसे भी नाम FIR में शामिल हैं जो विदेश रहते हैं और पिछले साल भर से अधिक समय से गांव नहीं आए हैं। राज्य सरकार की 7 निश्चय की योजनाओं की समीक्षा यात्रा पर निकले नीतीश कुमार का 12 जनवरी को नंदन गांव में कार्यक्रम प्रस्तावित था। महादलित टोला के लोगों के अनुसार उन्होंने चाहा था कि मुख्यमंत्री समीक्षा यात्रा के दौरान उनके टोले में भी आकर 7 निश्चय की योजनाओं का हाल जाने। अपने घर के सामने की गली की ओर इशारा करते हुए सुमित्रा देवी कहती हैं,
भाई रहे कि आई मीन वहाँ का
इन्हीं गलियों और नालियों के लिए तो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। सब पक्का हो गया रहता अगर वो घटना नहीं घटती। उस दिन नीतीश कुमार आए थे, हम लोगों को बोला गया था कि नीतीश कुमार नंदन गांव में ही आए हैं तो उनसे जाकर गुहार लगाएं कि चलिए हमारी हालत देख लीजिए, लेकिन हम कह भी कहां पाए। हमारे विधायक ददन पहलवान पहले तो हम लोगों को ले गए, फिर हम ही लोगों को मार कर भगाने लगे, औरतों को पकड़ कर फेंकने लगे। मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की सच्चाई क्या है इसका अभी तक कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाया है। एक तरफ जहां नंदन गांव के महादलित टोला में रहने वाले लोग पत्थरबाजी की घटना को स्थानीय विधायक ददन पहलवान और अन्य की साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल जदयू द्वारा कराई गई यह जांच में पाया गया है कि इसमें राजद समर्थकों का हाथ था। अपने खिलाफ लग रहे गंभीर आरोपों और जांच पर उठ रहे सवालों के जवाब में बक्सर पुलिस का कहना सिर्फ इतना है कि मामला अदालत के अधीन है। नीरज प्रियदर्शी, BBC हिंदी।
अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ सिंधु वासनी स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। जी सिंधु,
शाहिद आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स आधार सम प्राइवेसी। नवभारत टाइम्स लिखता है, निराधार नहीं आधार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आधार बरकरार। और पंजाब केसरी लिखता है, सुप्रीम फैसलों का दिन। जैसा कि आप बता रहे थे, इतने फैसले आए उन सबको देखते हुए जी। इसके अलावा एक ज़रूरी खबर जो कई अखबारों में है, खबर ये है कि एसी, फ्रिज, गहने और वॉशिंग मशीन जैसे 19 सामान महंगे हो जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार इन पर आयात शुल्क बढ़ाने वाली
जी,
है
जी।
और सरकार का कहना है कि रुपए की गिरती कीमत और चालू खाते के घाटे को कंट्रोल में करने के लिए फैसला लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण से संबंधित जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कहते हैं, वो दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेतृत्व और साल 2022 तक भारत को प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुक्त करने के वादे के लिए दिया गया है। पीएम मोदी के अलावा ये पुरस्कार फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और 4 लोगों को दिया गया है। एक और खबर पीएम मोदी से ही जुड़ी, खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है और खबर ये है कि कॉल ड्रॉप से सिर्फ हम और आप ही परेशान नहीं है बल्कि पीएम मोदी भी परेशान है।
अच्छा।
और उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आधिकारिक आवास पर आ रहे थे और उस वक्त वो उन्होंने कई लोगों को फ़ोन करने की कोशिश की और बार बार उनकी कॉल ड्रॉप होती रही। उसके बाद उन्होंने दूरसंचार मंत्रालय से कहा कि वो टेलीकॉम कंपनियों से मिलकर समस्या का समाधान ढूंढे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंधुवासिनी अखबारों की समीक्षा के लिए। मालदीव में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। माना जा रहा था कि इन चुनावों में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की जीत होगी, मगर नतीजे चौंकाने वाले रहे और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद ने यामीन को हरा दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन समर्थित यामीन की हार के बाद मालदीव में एक बार फिर पश्चिमी देशों और भारत का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस बार के दुनिया जहां में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श राठौर।
दुनिया जहां, मालदीव में जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के समर्थकों ने नाच गाकर इस तरह से जश्न मनाया। उम्मीद लगाई जा रही थी कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन एक बार फिर चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पर्यवेक्षकों का मानना था कि चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में करने के लिए गड़बड़ की जा सकती है, मगर जब नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले रहे। यामीन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एसडी मुनि कहते हैं कि इस हार को अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता।
मुझे ये हार अप्रत्याशित नहीं लगती है, वो इसीलिए कि ओपोजिशन इकट्ठा हुआ था और यामीन के जो गतिविधियां थी जिसमें उन्होंने सभी ओपोजिशन लीडर्स को कैद में डाल दिया और इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, उससे आम जनता मालदीव की खुश नहीं थी। जो डर था वो ये था कि ये प्रेसिडेंट यामीन इलेक्शंस को साफ सुथरा नहीं होने देंगे।
इस चुनाव में जीतने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को लोग प्यार से इबू कहते हैं। वो मालदीव के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं और कई सालों से लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करते रहे हैं। इस बार उन्हें निर्वासन में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, जमहूरी पार्टी और अदालत पार्टी ने संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चीनी अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली चुनाव के इन नतीजों को ऐतिहासिक मानते हैं।
महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, कोई नहीं सोचा क्योंकि इतना रिप्रेशन थी, प्रीवियस प्रेसिडेंट उनको एग्जाइल में डाला, करप्शन चार्जेस उन्होंने रखा उसके ऊपर।
सवाल ये उठता है कि निरंकुश तरीके से शासन करने के आरोपों में घिरे अब्दुल्ला के हारने के बाद क्या मालदीव की व्यवस्था भी बदल जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है। 1965 में आज़ादी मिलने के बाद पहले यहाँ राजशाही रही, फिर देश एक गणतंत्र बना और फिर तख्ता पलट हुए। 30 साल तक गयूम राष्ट्रपति रहे और जब 2008 में यहाँ नया संविधान बना उसके बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई। क्या अब यहाँ लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने की उम्मीद की जा सकती है? प्रोफेसर एसडी मुनि कहते हैं कि इसमें अभी समय लगेगा।
संविधान बदले नहीं बदले, असली बात यह कि संविधान को ठीक से लागू करना चाहिए। देखिए कई बार जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन लोग उसको अच्छी स्पिरिट से लागू नहीं करते हैं और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है।
मालदीव पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन की प्रतिद्वंदिता के रणक्षेत्र के तौर पर भी उभरा है। साथ ही हिंद महासागर में इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण पश्चिमी देशों की भी इसमें रुचि रहती है। 30 सालों तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोमून अब्दुल कयूम को भारत का करीबी माना जाता था और एक बार उनके तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत ने अपनी सेना भी भेजी थी। उनके बाद राष्ट्रपति बने मोहम्मद नशीद अमेरिका और ब्रिटेन से करीबी रखने के पक्षधर थे, मगर उनके बाद सत्ता में आए अब्दुल्ला यामीन ने भारत और पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर चीन से करीबी बढ़ा ली थी। इस बार के चुनावों में अब्दुल्ला यामीन को चीन समर्थित उम्मीदवार कहा जा रहा था, जबकि उनको हराने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को वेस्ट और भारत समर्थित उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन क्या अब्दुल्ला यामीन की हारने और भारत से कथित तौर पर सहानुभूति रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के सत्ता में आने के बाद फिर से मालदीव चीन से दूरी बनाकर भारत के करीब आ पाएगा? प्रोफेसर एस टी मुनि कहते हैं,
वो अभी देखना पड़ेगा आपको। देखिए, चीन का बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है और वो भारी इन्वेस्टमेंट खाली सरकार बदलने से चीन नहीं छोड़ने वाली है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो पुराने हमारे एक्सपीरियंस है श्रीलंका का है, या आप नेपाल का ले लीजिए या पाकिस्तान का ले लीजिए, उसमें चीन कोई बहुत इजी पुश ओवर नहीं है। तो ये समझ लेना कि सिर्फ सरकार के बदल जाने से वहां से चीन का प्रभाव खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती होगी।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यामीन के सत्ता से हटने के बाद पश्चिमी ताकतों भारत और चीन के बीच मालदीव को अपने प्रभाव में लेने की होड़ मच जाएगी? प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली कहते हैं,
मुझे लग रहा है कि चीन का अप्रोच एक प्रैग्मेटिक होगी, क्योंकि हम अगर इमरान खान को देखें या महातिर मोहम्मद को देखें या नेपाल में ओली को देखें या श्रीलंका में सिरिसेना को देखें, तो नया लीडर जो बनाते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उनको अप्रोच किया जाता है और कोई अरेंजमेंट भी हो सकती है उसके बीच में। तो हम ये देखना चाहिए कि दो महीने के बाद नया गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या होगी चीन के बारे में और भारत के बारे में।
चुनाव के नतीजे घोषित होने से लेकर नए नेता को सत्ता में आने में मालदीव की व्यवस्था के हिसाब से 2 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वहां काफी उठापटक हो सकती है। बहरहाल अब्दुल्ला यामीन ने हार स्वीकार कर ली है और जीतने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव को नई दिशा देने का वादा कर रहे हैं।
दिस इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज अ मोमेंट ऑफ होप, दिस इज अ मोमेंट,
ये खुशी का मौका है, ये मौका है उम्मीदों का, ये मौका ऐतिहासिक है। हम में से कई लोगों के लिए ये बड़ी कठिन यात्रा रही है, ऐसी यात्रा जो जेल या निर्वासन से होकर गुजरी है। ये एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं का राजनीतिकरण और दमन देखा है। ये एक ऐसी यात्रा रही है जो मतपेटी पर आकर खत्म हुई है, अब नेतृत्व जनता के हाथ में होगा।
इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मानते हैं कि अब देश में नए युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एशिया के इस सबसे छोटे देश के सामने विदेशी कर्ज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और धार्मिक कट्टरपंथ जैसी कई चुनौतियां खड़ी हैं। इन चुनौतियों से मालदीव तभी निपट पाएगा जब यहां राजनीतिक स्थिरता आ पाएगी।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे आदर्श राठौर, कैसा लगा हमें जरूर लिखें। रुख करते हैं क्रिकेट का। कल रात अबू धाबी में खेले गए एशिया कप के सुपर फोर के रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 37 रनों से हरा दिया। इसके बाद अब ये साफ हो चुका है कि शुक्रवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत और बांग्लादेश का सामना होगा। बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवरों में 239 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं 240 रनों का लक्ष्य प्राप्त करने उतरी पाकिस्तानी टीम पूरे 50 ओवरों में 9 विकेट पर कुल 202 रन ही बना पाई। अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन अमेरिका के आगामी मध्यावधि चुनावों को प्रभावित करना चाहता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित उम्मीदवार ब्रेट कैनवो के खिलाफ तीसरी महिला ने यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। जूली स्वेटिंग नाम की इस महिला का कहना है कि कैनवो 1980 के दशक में हाउस पार्टियों में लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका यौन शोषण करने वालों में शामिल थे। दो ऑनलाइन खोजी समूहों का दावा है कि उन्होंने पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर नर्व एजेंट से हमला करने वालों की असली पहचान कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गंभीर आर्थिक संकट से जूझते अर्जेंटीना को जल्दी कर्ज देने के लिए राजी हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के बढ़ते तापमान की वजह से आर्कटिक में पौधों की ऊंचाई सामान्य से अधिक बढ़ने लगी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।